नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। एतावान् अव्ययो धर्मः पुण्यश्लोकैरुपासितः यो भूतः शोकहर्षाभ्याम् आत्मा शोचति हृष्यति। और श्लोक है न, दसवां भी है न। अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक्यै क्षणभंगुरै जन्मोपकुर्यात् अस्वार्थः मर्त्य स्वज्ञाति विग्रह।
धार्मिक नियम पुण्य श्लोक अत्यंत पवित्र कहे जाने वाले प्रसिद्ध पुरुषों द्वारा उपासित मान्य, यह जो भूत जीवों का शोक दुख से हर्षाभ्याम तथा सुख से आत्मा मन सोचती पश्चाताप करता है, हर्षति प्रसन्न होता है। अर्थ प्रभुपाद जी का, यदि कोई मनुष्य दूसरे जीवों के दुख से दुखी होता है और उनके सुख को देखकर प्रसन्न होता है, तो पवित्र तथा परोपकारी महापुरुषों द्वारा ऐसे पुरुष के धर्म को अविनाशी माना गया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, प्राकृत गुणों से प्राप्त शरीर के अनुसार मनुष्य तरह तरह के धर्मों का या व्यवसायों का पालन करता है, किंतु इस श्लोक में असली धर्म की व्याख्या दी गई है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे के सुख से सुखी हो। आत्मवत् सर्वभूतेषु, दूसरों के सुख तथा दुख को अपना ही मानना चाहिए। इसी प्रकार, इसी आधार पर बौद्धों का अहिंसा का धार्मिक सिद्धांत स्थापित है, अहिंसा परमो धर्म। जब कोई हमें सताता है तो हमें पीड़ा पहुंचती है, अतः हमें अन्य प्राणियों को नहीं सताना चाहिए। भगवान बुद्ध का ध्येय वृथा पशु हत्या को बंद करना था, इसलिए उन्होंने उपदेश दिया कि अहिंसा ही परम धर्म है। एक ओर कोई पशुओं का वध करता रहे और दूसरी ओर धार्मिक कहलाए, ऐसा संभव नहीं। यह सबसे बड़ी धूर्तता है। जीसस क्राइस्ट ने कहा, हिंसा मत करो, किंतु धूर्त लोग अपने को ईसाई बताकर हजारों कसाई घर चला रहे हैं। इस श्लोक में ऐसी धूर्तता की निंदा की गई है। मनुष्य को दूसरों को प्रसन्न देखकर प्रसन्न होना और उन्हें दुखी देखकर दुखी होना चाहिए, इसी नियम का पालन होना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस समय तथाकथित परोपकारी तथा मानववादी लोग बेचारे पशुओं के प्राण लेकर संपूर्ण मानवता के सुख का समर्थन कर रहे हैं। इस श्लोक में इसकी संस्तुति नहीं की गई है। इस श्लोक में यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य को सभी जीवों के प्रति दयालु होना चाहिए, चाहे मनुष्य हो, पशु या वृक्ष। ये सभी जीवात्माएं श्री भगवान की संतानें हैं। भगवद्गीता 14:4 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वजोनि सुकौन्तेया मूर्तया सम्भवन्त्या तासां ब्रह्म महद्योनि रहम बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, यह समझ लेना चाहिए कि सभी प्रकार की योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म लेने के कारण ही संभव है और मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। इन जीवात्माओं के विभिन्न रूप उनके बाह्य वेशभूषाएं हैं। प्रत्येक जीव वास्तव में आत्मा है जो ईश्वर का अंश है, इसलिए किसी एक प्रकार के जीव का पक्ष नहीं लेना चाहिए। वैष्णव समस्त जीवों को ईश्वर का अंश मानता है, जैसा कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिन। यथार्थ ज्ञानी पुरुष विनम्र विद्या विनय युक्त ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ते और चंडाल में समान दृष्टि से देखता है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। दिव्यत्व प्राप्त पुरुष को तत्काल परब्रह्म की अनुभूति होती है और वह पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो शोक करता है और न किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह सब प्राणियों में समभाव रखता है। इस अवस्था में वह मुझमें शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। अतः वैष्णव सचमुच पूर्ण मानव है, क्योंकि वह दूसरे को दुखी देखकर शोक करता है और अन्यों को प्रसन्न देखकर स्वयं प्रसन्न होता है। वैष्णव पर दुख दुखी होता है। वह बद्ध जीवों को भौतिकता से दुखी देखकर सदैव दुखी होता है। इसलिए वैष्णव सारे संसार में कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने में सदैव व्यस्त रहता है।
महोकष्टम पारक्ये क्षणभंगुरे यन्नो पकुरियात अश्वार्थे मर्त्यः स्वज्ञाति विग्रहे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। यह शरीर जिसे मृत्यु के पश्चात कुत्ते तथा गीदड़ खा जाएंगे, मेरे अपने किसी काम का नहीं है। यह कुछ काल तक ही काम आने वाला है और किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। यह शरीर तथा इसके सभी कुटुंबी तथा संपत्ति परोपकार में लगने चाहिए, अन्यथा वे सब दुख एवं विपत्ति के कारण बनेंगे। तात्पर्य श्रीमद् भागवत 10:23-35 में अन्यत्र ऐसा ही उपदेश दिया गया है, एतावन जन्म साफल्यम देहिनाम यह देहिषु प्राणे रर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। यह प्रत्येक जीव का धर्म है कि अपने जीवन धन बुद्धि तथा वाणी से अन्यों के हित के लिए शुभ कार्य करें। यह जीवन का ध्येय है। अपना शरीर तथा अपने मित्रों एवं परिजनों के शरीर तथा अपनी संपत्ति एवं जो कुछ भी हो वह सारा परोपकार में लगा देना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का यही संदेश है। श्री चैतन्य चरितामृत आदि 9:41 में कहा गया है, भारत भूमिते हैल मनुष्य जन्म यार जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिसने इस भारत भूमि में मनुष्य के रूप में जन्म लिया है उसे चाहिए कि वह अपने जीवन को सफल बनाए और दूसरों के हित के लिए कार्य करे। उपकुरियात शब्द का अर्थ है पर उपकार, अर्थात दूसरों की सहायता करना। निसंदेह मानव समाज में ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जो दूसरों की सहायता करती है, किंतु परोपकारी समाज सेवी यह नहीं जानते कि अन्यों की सहायता किस प्रकार की जाए। अतः उनकी समाज सेवा की लालसा प्रभावशाली नहीं होती। वे जीवन के चरम उद्देश्य श्रेय आचरणम को नहीं जानते, जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। यदि समग्र समाज सेवी तथा मानवतावादी गतिविधियां जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करके श्री भगवान को प्रसन्न करने की ओर निर्देशित हों तब वे पूर्ण होंगी। श्री कृष्ण के बिना कोई भी मानवतावादी कार्य व्यर्थ है। श्री कृष्ण को प्रत्येक गतिविधि का केंद्र बनाना होगा, अन्यथा किसी भी गतिविधि का कोई भी मूल्य नहीं है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।
अमृत उपदेश कर रहे हैं, इनके उपदेश कई श्लोक दिए गए हैं। तो दधीची जी देवताओं से बात कर रहे हैं, एतावन अव्ययो धर्म, यही अविनाशी धर्म है, यही सनातन धर्म है। पूर्ण श्लोक है उपासिता, और इस धर्म का आचरण किया है बहुत श्रेष्ठ लोगों ने। पूर्ण श्लोक है, जैसे पूर्ण श्लोक महाराज युधिष्ठिर, नल महाराज, उनको पूर्ण श्लोक कहा गया है। उनकी कीर्ति परम पवित्र है। श्लोक का अर्थ होता है कीर्ति, जस, और पूर्ण का अर्थ है पवित्र करने वाली। ऐसे ऐसे महापुरुष हो गए हैं जिनकी चर्चा सुनने से, जिनका नाम लेने से कोई व्यक्ति पवित्र हो जाता है, वे हैं पूर्ण श्लोक। दधीची मुनि अपने से पूर्व में हुए पुरुषों का जिक्र कर रहे हैं, पूर्ण श्लोक है। पवित्र कृति महापुरुष जिस धर्म का आचरण किए हैं, वह धर्म क्या है? बस इतना ही धर्म है, एतावन, दूसरे प्राणी को दुखी देख करके मन में दुख हो और दूसरे को सुखी देख करके सुख का अनुभव करे, बस इतना ही धर्म है। एतावन अव्ययो धर्म, इतना ही धर्म है। एतावन बता रहा इतना ही। अन्यत्र एक जगह भगवान विद्यास देव ने कहा है इतना ही धर्म है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, जो अपने को दुख दे, अपने को अच्छा न लगे, वह काम दूसरे के प्रति नहीं करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, भगवान विद्यास देव ने कहा है। 18वें पुराण में, सभी शास्त्रों में यही बात कही है, आत्मनः प्रतिकूलानि, जो विचार जो व्यवहार अपने प्रतिकूल लगे वो दूसरे के प्रति नहीं करना चाहिए। किसी भी प्राणी को कुछ कष्ट होता है, कोई सुई चुभावे तो उसको कष्ट होगा, तो वही कष्ट दूसरे को नहीं देना चाहिए। तो यह अविनाशी धर्म है। अविनाशी धर्म का मतलब है वह धर्म जिसका फल अमर होता है, अक्षुण होता है। इस जन्म में व्यक्ति धर्म का आचरण करेगा तो दूसरे जन्म में स्वर्ग प्राप्त होगा, अथवा श्री भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त होगा, जो अविनाशी है। तो अविनाशी धर्म उसको कहते हैं जो अविनाशी लक्ष्य को प्राप्त करा दे, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। एतावान अव्ययो धर्म, महर्षि दधीची जी कह रहे हैं एतावान इतना ही अविनाशी धर्म है। क्या जीवों के दुख को देख करके दुखी होना और उनके सुख को देखकर सुखी होना, बस यही धर्म है। दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो जाना और दूसरे के दुख को देखकर के दुख का अनुभव करना, इतना ही धर्म है। एतामन शब्द बता रहा है इतना ही, यही धर्म का सार है। ये समझ लेना चाहिए कि सब आडंबर है, धर्म नहीं है। जैसे बहुत बड़ी तिलक कर लिए, बड़ी कंठी बांध लिए, ये धर्म नहीं है। धर्म है दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना और दूसरे के सुख को देख करके सुखी होना, यही धर्म है। इतना ही धर्म है और अविनाशी धर्म, सनातन धर्म। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस संसार में बहुत से धार्मिक लोग हैं, कहे जाने वाले। सबसे पहले उपदेश करते हैं कि जैसे क्रिश्चियन लोग मानते हैं कि हम क्राइस्ट के फॉलोअर हैं, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने स्पष्ट 10 आर्डर में एक आर्डर दिया है, दाउ शाल्ट नॉट किल, तुमको किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। पर ईसाई जगत में ऐसी हजारों संस्थाएं हैं जहां कसाई खाना खोले हुए हैं, पशुओं का वध करना और पशुओं का मांस खाना यह धर्म बना लिए हैं। यही समझते हैं लोग कि हम पशु वध करेंगे, मांस खाएंगे, यही धर्म है। उनको थोड़ा भी विचार नहीं है कि पशुओं को कितना कष्ट होता है। कसाई खाना ले जाने में किसी ट्रक में ठूस ठूस करके भरते हैं, ले जाने में दुख, पहुंच जाने पर बिना खाए पिए पशुओं को रखते हैं, पानी नहीं पिलाते हैं, भोजन नहीं देते हैं, पशु बिल्कुल छटपटाने लगता है। और उसके बाद कसाई खाना में जो यंत्र होते हैं, उन यंत्रों में उसको फंसा करके उसकी गर्दन काट देते हैं। जीवित अवस्था में सब उत्पात होते हैं, बहुत बड़ा अत्याचार करते हैं, लेकिन फिर भी वे बड़े बड़े पोप कहे जाते हैं या बड़े बड़े फादर क्रिश्चियन पोज करते हैं, बहुत बड़े बड़ा कपड़ा पहनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पादरियों का कपड़ा, बहुत फर्स्ट क्लास का कपड़ा पहनते हैं, जूता पहनते हैं और हजारों लोग प्रणाम करते हैं, ये क्राइस्ट के फॉलोअर आ गए। लेकिन क्राइस्ट ने जो आज्ञा किया है उसमें से एक आज्ञा कभी पालन नहीं कर पाते हैं। जीसस क्राइस्ट ने 10 आर्डर दिया है, उसमें एक बहुत प्रसिद्ध आर्डर है, दाउ शाल्ट नॉट किल। पर क्रिश्चियनों को इतना भी मालूम नहीं है कि क्या कौन प्राणी है और कौन प्राणी नहीं है। वे ऐसा कहते हैं कि मनुष्य के अलावा कोई प्राणी नहीं है, इसलिए जीवों का वध किया करते हैं। हजारों हजारों गौएं, बकरियां, भेड़, मुर्गी आदि खाते रहते हैं। उन लोगों का ये इतना गंदा विचार है कि उनमें जीव नहीं है, गाय भैंस में भेड़ बकरी में जीव नहीं है, इतना भी नहीं समझ सकते हैं कि जीव किसको कहते हैं, जीवों की वेदना को क्या समझेंगे। यदि कोई बकरी दुख में पड़ जाती है तो रोती है, चिल्लाती है, परंतु उन लोगों को कुछ भी ध्यान नहीं है कि यह जीव है, दुख भोग रहा है। जीव में और निर्जीव में क्या अंतर है इतना तक मालूम नहीं है, फिर भी बड़े बड़े पोप बने हुए हैं, क्रिश्चियन लीडर बने हुए हैं, कितना बड़ा ज्ञान है, इतना भी मालूम नहीं है कि गाय में भी प्राण है, जीव है, वो भी सुख का अनुभव करती है, दुख का अनुभव करती है। उन लोगों को इतना ज्ञान ही नहीं है, बिल्कुल पत्थर जैसा कलेजा है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं हजारों कसाई खाना को देखा हूं, सुना विदेश में और अब तो भारतवर्ष में भी हजारों हजारों कसाई खाना है और उनका संचालन बड़े बड़े चर्च के द्वारा होता है। चर्च को माना जाता है कि यह क्राइस्ट का पवित्र स्थान है जहां क्रिश्चियन लोग आकर के प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना क्या करते हैं? प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हमको 7 दिन पाप करने की छूट दीजिए, फिर संडे को आएंगे, अपना जो भी पाप किए हैं आपको दे देंगे, आप भोगते रहिए, आप सूली पर चढ़े रहिए और हम फिर पाप करने जाएंगे। संडे को आते हैं, सारा पाप का फल क्राइस्ट भगवान को दे जाते हैं और ये कहते हैं कि क्राइस्ट हमारे लिए सफर कर रहे हैं, हमारे लिए दुख भोग रहे हैं और तुम ऐसे भक्त हो कि क्राइस्ट को दुख दे रहे हो और साप्ताहिक अमाउंट पाप का अर्पित करते हैं। तो क्रिश्चियन क्राइस्ट चर्च में इसीलिए जाते हैं कि फ्री हो जाए, जो भी पाप किए हैं वो पाप फल लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ले लें और हम पाप करने के लिए फिर छुट्टी हो जाए, फिर पाप करेंगे, अब अगले संडे को आएंगे आपको पाप अर्पित कर देंगे। यह कोई धर्म नहीं है, ये व्यर्थ लोगों ने मान लिया है कि ये धर्म है। वास्तव में सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं है। और सनातन धर्म क्या है? इतना ही कि जीवों के दुख को देख करके दुखी होना और सुखी देख करके सुखी होना। यह भारतवर्ष के बहुत महान ऋषि का उद्गार है जिनका नाम दधीची है। कितना सुंदर उपदेश है, एतावन अव्ययो धर्म, यह अव्यय धर्म है, इसका फल अविनाशी होगा, भगवान का धाम मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। मन में दुख होना चाहिए दूसरे दुखी जीवों को देख करके, और सुख होना चाहिए सुखी देख करके। जैसे हम लोग गाय को देखते हैं, गाय खाना खाती है, घास खाती है, पेट भरा रहता है, तो किस तरह से वह अपने बच्चे को प्रेम से चाटती है, दूध पिलाती है, और दूध पीने के बाद बच्चा फुदकने लगता है, दौड़ता है, तो उसको देख करके स्वाभाविक सुख की अनुभूति होती है। ये सुखी है, गाय सुखी है, उसका बच्चा सुखी है, तो उसको सुखी देख करके सुख का अनुभव करना है। परंतु दुखी देख करके उसको भोजन न मिले, पानी न मिले, और जब इसके बाद आनंद बाजार में जो अन्न बच जाता है, जिसको दुकानदार लोग फेंक देते हैं, गायों को डाल देते हैं, गायें भी जब नहीं खाती हैं तब वो अन्न सड़ करके नाली में बहता है, तो वही अन्न भात नाली से छान करके पतल पर रह करके रघुनाथ खाते थे, सड़ा हुआ अन्न जिसको गाय भी नहीं खाती थी। जो पानी में वो लाते थे, पानी में धो करके और भात को खाते थे, और नमक नहीं, कुछ नहीं उसमें। तो भगवान को तो सब पता है, वे पूछते रहते थे इस समय क्या कर रहा है रघुनाथ। तो स्वरूप दामोदर जी ने बताया वो बहुत त्याग से रहता है। एक दिन चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे कि रघुनाथ नाली से भात छान करके फिर पानी में धो करके उसी भात को खा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने देखा, पीछे से गए धीरे से और झपट करके पत्तल पर से भात उठा लिए, फिर रघुनाथ ने कहा प्रभु ऐसा मत कीजिए, ये आपके योग्य नहीं है। आप मत खाइए, आप मत खाइए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो लेना था और लेकर के तुरंत भात को मुख में लगा ली, खाने लगी। और जब रघुनाथ ने कहा कि आपके योग्य नहीं है, तब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ऐसा मधुर प्रसाद मैं समस्त जीवन में नहीं पाया था, इतना सुंदर स्वादिष्ट। स्वरूप दामोदर जी को कहने लगे चैतन्य महाप्रभु, देखिए यह रोज रोज इतना सुंदर प्रसाद खाता है और हमको निमंत्रण नहीं दिया है। फिर स्वरूप दामोदर जी ने भी कह दिया कि नहीं, आपको ऐसा नहीं खाना चाहिए। तो यह केवल इसी के योग्य है, रघुनाथ के योग्य। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर जी को रघुनाथ को दिया, कहा कि इस यह आज से स्वरूपेर रघु, इस स्वरूप का रघु कहा जाएगा, आप इसकी संभाल कीजिए। तो रघुनाथ इतने संकोची थे कि चैतन्य महाप्रभु से कभी बात नहीं करते थे, कभी उनके तरफ देखते नहीं थे, सिर नीचा रखते थे बात करते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा स्वरूप दामोदर जी से कि आपका शिष्य हमसे बात भी नहीं करता है, आपसे तो जरूर करता होगा। तो स्वरूप दामोदर जी ने कहा कि हाँ हमसे तो बात करता है, ये यही कहता है कि चैतन्य महाप्रभु हमारा घर छुड़ा दिए तो अब हमारा क्या कर्तव्य है वो भी बताएं। तब डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे रघुनाथ से कि रघुनाथ मैं जो जानता हूं इन्हीं की कृपा से जानता हूं, स्वरूप दामोदर जी की कृपा से, ये बहुत बड़े विद्वान हैं, ये जो कुछ कहेंगे वही परम प्रमाण होगा। तुम इन्हीं से कुछ कुछ सीखो। तब स्वरूप दामोदर जी ने कहा देखो कभी अच्छा मत खाना, वो अच्छा कहाँ खाते थे, और कभी सांसारिक चर्चा मत करना, किसी की निंदा मत सुनना, किसी के गुण दोष को मत कहना, अच्छा खाना नहीं अच्छा पहनना नहीं लोक चर्चा मत करना, सब समय कृष्ण का नाम जपना, इतना बड़ा वैराग्य उन भक्तों में था। रघुनाथ दास के स्वामी वे जब वृंदावन आए, राधा कुंड पर रहते थे, तो 24 घंटे में एक बार थोड़ा सा छाछ पीते थे, भोजन में वही छाछ था थोड़ा सा, और 100,000 जप करते थे। और वही राधा कुंड से ही स्मरण करके कि द्वारका में इतने वैष्णव हैं इनको प्रणाम, साष्टांग प्रणाम करते थे, वृंदावन में रहने वाले भक्तों को साष्टांग, नवदीप में रहने वाले, जगन्नाथपुरी में रहने वाले समस्त वैष्णवों को मन ही मन याद करके और दंडवत प्रणाम करते थे। भोजन कितना कम, छाछ पीना और दंडवत प्रणाम, ऐसा लिखा कि 1,000 दंडवत प्रणाम करते थे भक्तों को और भगवान को, सदा नाम जपते थे। आप लोगों ने सिख भक्तों में पढ़ा होगा मन शिक्षा, उनका एक बहुत प्रसिद्ध है ग्रंथ है मन शिक्षा, मन को शिक्षा, बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है। ग्रंथ लेखन करते थे, तीर्थों का उद्धार करते थे, और दिन रात कृष्ण का नाम जपते थे। तो इस तरह रघुनाथ दास के स्वामी थे। श्रीनिवास आचार्य कहते हैं, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छ। बड़े बड़े राज्य को मंडलपति श्रेणी को तुच्छ समझ करके छोड़ दिए। और भूतवा दीन गणेश कौ, और दीनों में अतिशय दीन बन करके, दीनों का राजा बन करके रहते थे, दीनों का राजा। यह ऐसा पद है कि किसी भी भक्त के लिए सुलभ है। दीन बनने में क्या दिक्कत है, न पैसा कमाना है और न कपड़ा अच्छा जुटाना है और न तो संन्यास लेना है, दीन बनना है। दीन गणेश कहो, दीन जनों में सबसे श्रेष्ठ। ये चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है, दीन बन जाना है। दीन बनना बहुत बड़ा काम है, किसके लिए दीन बने, जीवों पर दया करने के लिए। जीवों पर दया करने के लिए रूप ने अपना पद छोड़ा, सनातन ने पद छोड़ा है, रघुनाथ दास के स्वामी ने धाम छोड़ा है। छोड़ करके ये जीवों का उपकार कर सके। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यही करना है। इन गोस्वामियों से पहले श्रील दधीची मुनि कहते हैं, अध्रुवेण आत्मना, यह शरीर अध्रुव है, आज है कल नहीं रहेगा, अध्रुव है, अनित्य है। इस अनित्य देह से जीवों पर दया करना चाहिए और धर्म करना चाहिए। धर्म का अर्थ है अपना कर्तव्य। हमारा सब समय सभी देश में क्या कर्तव्य है, कर्तव्य है भगवान में भक्ति उत्पन्न कर लेना है। भक्ति होती है भगवान का नाम जपने से, प्रणाम करने से, तो यही कर्तव्य है। तो जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को नहीं कर पाता है, भक्ति नहीं कर पाता है और जीवों पर दया करके अमर जस नहीं कमा लेता है, उस व्यक्ति पर वृक्ष भी सोच करते हैं। स्थावर, जो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, जहां जन्म भगवान ने दिया है वहीं घाम सहते हैं, दुख सहते हैं, जाड़ा सहते हैं, आंधी सहते हैं, पर वे भी अपने अंगों से दूसरे का उपकार करते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, एक बार वे जमुना के तट पर गाय चराते हुए गए, बहुत दूर निकल गए। गर्मी का महीना था, धूप काफी थी, जमुना के किनारे भगवान चल रहे थे अपने सखाओं के साथ, 10 मित्रों के साथ। स्तु कृष्ण तेजस्वी वरुथप सुबल श्रीदाम आदि सखा थे, इनको दिखा करके भगवान कहने लगे, देखो मित्रों, ये महाभाग्यवान है वृक्षगण, कितना उपकारी हैं, स्वयं घाम सहते हैं, सह रहे हैं, शांतो वारयंति न, और हम लोगों का घाम से निवारण करते हैं, रक्षा करते हैं, घाम से, हिम से, वर्षा से, आंधी से हम लोगों की रक्षा करते हैं। देखो इनके जीवन का एक एक अंग दूसरे के लिए काम आता है। भगवान ने गिनाया है मूल बलकल दार भी, इनका मूल, इनका बलकल, बुकला, इनका पत्ता, इनकी छाया, सब दूसरे जीवों के काम में आते हैं। देखो कितने बड़े उपकारी हैं, उपकार कर रहे हैं। वृक्ष पर पक्षी अपने आप बैठते हैं, उनके घर का काम करते हैं। इनके शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है जो बेकार जाता है। यहां तक कि भस्म, शरीर का भस्म बनता है लकड़ी से, लकड़ी को जला करके राख बनती है, वो राख निर्जीव है। निर्जीव और जीव में अंतर समझते हैं। एक बार तर्क हो रहा था इस विषय पर कि कैसे पहचाना जाए कि जीव है जीव नहीं है, तो एक भक्त तर्क दिया कि जीव को दुख होता है तो चिल्लाता है, या हर्ष होने, खुश होने पर वो बोलता है, जो उसे पता चल जाता है कि यह दुखी है या सुखी है। तो विपरीत साइड से तर्क करने वाला कर रहा था, वो कहा कि ऐसे लकड़ी को भी तोड़ा जाए तो चीर चीर शब्द होता ही है, पत्थर को भी फोड़ा जाए तो आवाज होती ही है, केवल आवाज से पहचान होती है कि यह जीव है या ठीक नहीं है। इतना बड़ा दुर्विचार, लेकिन लकड़ी तोड़ने से अगर चड़चड़ आवाज हो तो उससे क्या ये माना जाएगा कि इसमें जीव है? हमको ये बात बता रहे थे राधारमण महाराज जी, तो ये विदेशों में विचार है, तभी जीव का पता ही नहीं लग रहा है, इतना अंतर है। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिनका जन्म भारत वर्ष में हुआ है, भारत वर्ष में मनुष्य शरीर प्राप्त है, वे अपने जीवन को सार्थक करें और परोपकार करें। विदेश में बहुत मुश्किल है किसी चीज को ठीक से समझ पाना और करना है, ये बहुत मुश्किल है। जहां के लोगों को यह बताना भी कठिन है कि जीव का क्या लक्षण है और निर्जीव का क्या लक्षण है, इतना भी पता नहीं है, वहां धर्म की शिक्षा क्या कोई देगा? यहां तो सब बच्चा बच्चा समझता है कि जीव क्या है, बकरी के बच्चे को देख करके भी प्यार करेगा इसमें जीव है, कुत्ता के बच्चे को भी देखकर प्यार करेगा ये जीव है, मनुष्य के बच्चे को देखकर प्यार करेगा जीव है। एक बार यहां एक सभा में अकस्मात गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूछ दिया एक मुसलमान से, बहुत प्रसिद्ध मुसलमान थे बादशाह अकबर के समय के, रहीम खान खामा, तो रहीम जी से पूछती है तुलसीदास जी ने कि ये हाथी अपने सिर पर धूल क्यों रखता है, धूल धूल धरत निशीष पर कहो रहीम कहीं काज, किस कारण से हाथी धूल को उठा करके अपने सिर पर डालता है। तब रहीम जी ने तत्काल उत्तर दिया, जही रज मुनि पत्नी तारी सही ढूंढत गजराज, जिस धूली को पा करके गौतम की पत्नी तर गई, उसी धूल को भगवान के चरण धूली को यह गजराज आज भी खोज रहा है। इतना सुंदर उत्तर दिया है, यह केवल भारतवर्ष में जन्म लेने के कारण था, ऐसा पवित्र देश है। एक मुसलमान बोल रहा है कि जिस भगवान के चरण धूलि से गौतम जी की पत्नी अहिल्या तर गई, उसी धूलि को चरण धूलि को गजराज अपने सिर पर डालता रहता है आज भी। कई हजार वर्ष बीत गए, कई लाख वर्ष बीत गए, फिर भी हाथी में यही प्रवृत्ति है कि वो चरण धूलि मिल जाए। इतना सुंदर उत्तर पाकर के गोस्वामी तुलसीदास जी खुशी से नाच उठे। तो इस तरह का उन्नत विचार केवल इस देश में है, परंतु इस देश की दुर्दशा हो गई विदेशियों के संपर्क से। धीरे धीरे अब चला दिए सेकुलर स्टेट, धर्म निरपेक्ष शासन, धर्म का कोई संबंध नहीं रहा। लेकिन भारतवर्ष के महामनीषी ब्रह्मर्षि दधीचि मुनि बता रहे हैं, धर्म बस इतना ही है, एतावान इतना ही, यो भूत शोक हर्षाभ्याम आत्मा सोचते हृष्यति। दूसरे जीवों के दुख को देख करके मन दुखी हो और उनको उनके सुख को देख करके हर्षित हो, हृष्यति, यही इतना ही धर्म है। प्रायः हम लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा तिलक कर लें, माला धारण कर लें, हम धार्मिक हो जाएंगे। लेकिन धर्म केवल इतना ही है, दूसरे को दूसरे को सुख सुखी देह करके सुख अनुभव करना और दुखी देह करके दुख अनुभव करना। धर्म को समझना कठिन नहीं है, बहुत सरल है, आसान है। दूसरे को सुखी देह करके सुख का अनुभव करना और दूसरे को दुखी देह करके दुख का अनुभव करना, यही धर्म है। नौवें श्लोक में ब्रह्मर्षि दधीचि जी कह रहे हैं, दसवें श्लोक में फिर भी कहते हैं, अहो दैन्यम अहो कष्टम, अहो दैन्यम अहो कष्टम, पारक क्या क्षण भंग रहे, जन्नोपकुर्यात अस्वार्थ मर्त्या स्वज्ञाति विग्रह। इस इस संसार में भौतिक जगत में प्रत्येक शरीर मनुष्य का मर्त्य कहा जाता है। मर्त्य का अर्थ है कि जिस मरना निश्चित जिसको है, मरण निश्चित है, उसको मर्त्य कहते हैं। मर्त्य का अर्थ है मरने योग्य। तो कोई भी मनुष्य अपने धन द्वारा, अपने पुत्र आदि के द्वारा और अपने देह द्वारा स्वज्ञाति विग्रह, स्व का अर्थ वित्त, ज्ञाति मतलब गुत्या परिवार, अपने संबंधी पुत्र आदि और विग्रह देह, अपने देह द्वारा, धन द्वारा और अपने संबंधियों के द्वारा यदि न उपकुरिया, दूसरे का उपकार न करे, तो यह बहुत दैन्य की बात है। बहुत दैन्य, कितने कितना बेचारा है, लाचार, कि अपने देह द्वारा, अपने धन द्वारा और अपने संबंधियों द्वारा दूसरे का उपकार नहीं कर रहा है। वास्तव में मनुष्य का शरीर मिला है केवल दूसरे का उपकार करने के लिए। यदि कोई उपकार नहीं करता है तो यह जीवन उसका दैन्यपूर्ण है, दैन्य, केवल दुख भोगने के लिए है, हाय हाय करके जीने के लिए। अहो दैन्यम, अहो कष्टम, दीनता है। यदि दैन्य से, दीनता से पार होना है तो दूसरे के उपकार में लगना चाहिए। दधीचि मुनि केवल उपदेश ही नहीं कर रहे हैं, स्वयं उन्होंने अपने शरीर को दे दिया देवताओं के लिए। उनका प्रवचन और उनका एक्शन एक है। यह शरीर पारक के अंत में दूसरे के काम में आएगा, पारक के अपने काम में नहीं आएगा, पारक के ही। यदि किसी का शरीर किसी कारण से छूट जाए और उसे किसी अज्ञात स्थान में फेंक दिया जाए तो उसको खाने के लिए सबसे पहले कुत्ते आएंगे, सियार आएंगे। सियार रात्रि के समय आएंगे, कुत्ते और गिद्ध आएंगे खाने के लिए। तो शरीर अंत में उनके काम आएगा, इसलिए पराग पारक के कहा गया है। दूसरे का है, ये देह अपना नहीं है, क्योंकि इसके वास्तविक अधिकारी कुत्ते और गिद्ध हैं। उनका भोजन बन जाएगा। क्षण भंगुर है, यह बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए दिया गया है, बहुत कम समय के लिए। और कोई ठीक नहीं, कभी भी बीमार हो सकता है, मर सकता है। इसको क्षण भंगुर कहते हैं। क्षण मतलब अत्यल्प काल के लिए मिला हुआ है। और गारंटी नहीं है कि यह इतना दिन रहेगा ही, ये कब नष्ट हो जाएगा कुछ भी पता नहीं है, किस मिनट पैरालिसिस हो जाएगा, वाणी बंद हो जाएगी, देखना सुनना चलना बंद हो जाएगा, कुछ पता नहीं है। इसीलिए इसको क्षण भंगुर कहा गया है, ये कभी भी नष्ट हो सकता है। और अस्वार्थ है या निज प्रयोजन शून्य है, ये अपने उपयोग में बिल्कुल नहीं आएगा, अपने काम में शरीर नहीं आएगा। और धन भी ज्ञाति भी अपने परिवार या संबंधी ये काम में नहीं आएंगे अपने, और धन भी दूसरे के लिए है। धन को असुरक्षित रख दीजिए, अपने आप लोग ले जाएंगे, चोर नहीं स्वजन भी ले जाएंगे। ये तीनों का विशेषण है, स्वज्ञाति विग्रह, धन संबंधी और देह, ये अस्वार्थ है, अपने काम में नहीं आएंगे, परक के दूसरे के हैं। और आप चाहे दे या न दे, लोग नहीं लेंगे देह को, देह को तो कुत्ते ले लेंगे, नोच नोच करके खाएंगे, और धन को सरकार ले लेगी या कोई भी व्यक्ति ले लेगा। और पुत्र आदि को दूसरे लोग ले लेंगे, अपना काम कराएंगे। इसलिए कहा गया है, दधीचि मुनि कह रहे हैं अस्वार्थ है, यह देह अपने उपयोग में नहीं आएगा, अपने लिए है नहीं। देश का एकमात्र प्रयोजन है देह द्वारा, धन द्वारा और संबंधियों द्वारा दूसरे का हित करना, और ये उपकरण मिला है जीव को, मनुष्य को, उपकरण मतलब साधन, धन मिला है, देह मिला है और स्वजन मिले हैं, तो ये क्षणभंगुर हैं, कभी भी नष्ट हो जाएंगे। परिवार के संबंधी का कभी भी मन बदल जाएगा, कभी भी साथ छोड़ देंगे। तथा जब तक साथ हैं तब तक दूसरे का हित करना चाहिए, अपने भाई द्वारा, अपने पुत्र द्वारा, अपने मित्र द्वारा, संबंधी द्वारा, अपने धन द्वारा और अपने देह द्वारा। धन भी चला जाएगा, देह भी चला जाएगा, इस सबके लिए क्षणभंगुर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जब जाने वाला है और कभी भी चला जाएगा, इसलिए जब तक है तब तक दूसरे का उपकार करना चाहिए। दूसरे के उपकार के लिए ही धन है, दूसरे के उपकार के लिए ही जीवन है, देह है। यदि कोई उपकार नहीं करता है तो उसका जीवन दैन्यपूर्ण है, दैन्य लचार जीवन है, केवल दुख भोगने के लिए है। इसीलिए दैन्य और कष्ट दोनों शब्द का प्रयोग कर रहे हैं महर्षि दधीचि, अहो दैन्यम अहो कष्टम जत न उपक्रिया, जो दूसरे का उपकार नहीं करता है ऐसा जीवन दैन्य पूर्ण है, लचार जीवन है, दुखपूर्ण है। बहुत सुंदर उपदेश है कि यह देह है, स्वजन धन सब पारक के हैं, दूसरे के हैं। स्वज्ञाति विग्रह है, स्व का अर्थ है धन, ज्ञाति का अर्थ है संबंधी, और विग्रह का अर्थ है देह। विचार करके देखा जाए, धन दूसरे के काम आएगा, ले लेंगे, जीवित अवस्था में ही धन को लोग बांट लेते हैं। कोई व्यक्ति यह सोचे कि धन है तो मैं इससे सुख से खाऊंगा, पहनूंगा, घर बनाऊंगा, क्यों नहीं हमारे काम में आएगा। लेकिन घर बनाना, खाना पीना, कपड़ा पहनना, ये हमारा स्वार्थ नहीं है, यह देह दूसरे के लिए है। दूसरे के लिए यदि हमने घर बना दिया, धन को दान कर दिया, तब तो ठीक है, केवल उपकार के लिए भगवान ने हमको ये सुविधा दिया है। अतः हरेक दिन, हरेक वर्ष सब स्थान पर दूसरे का हित कैसे होगा, यही सोचते रहना चाहिए और वैसा काम करते रहना चाहिए। दूसरे का उपकार करना है, दूसरे का उपकार सबसे बड़ा यही है कि भगवान का नाम सुनाया जाए सबको, भगवान की कथा कही जाए, भगवान के बारे में बताया जाए। कृष्ण के बिना सभी दुखी हैं, कृष्ण को प्रसन्न करना यही जीवन का मिशन है, उद्देश्य है। हमेशा विचार रखना चाहिए कि ये जीवन या धन संबंधी ये चलायमान है, अनस्थिर है, धन आज है कल चला जाएगा, धन का कोई ठीक नहीं है कब तक रहेगा। यार कोई संबंध ही कब तक हमारे अनुकूल है या निश्चित नहीं है। देह कहीं निश्चित नहीं है तो धन और संबंधी तो कहना ही क्या है। दधीची मुनि का उद्गार है, कह रहे हैं देह धन और संबंधी ये सब क्षण भंगुर हैं, अस्वार्थ है, अपने काम नहीं आएंगे, इनका सबसे बेस्ट यूज है परोपकार करना, दूसरे के हित में इसको लगा देना, और अभी जल्दी, क्योंकि कब नष्ट हो जाए कोई पता नहीं, अतः जल्दी से जल्दी उपकार के काम में लगना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। एक ऐसे ऋषि का उद्गार है जिन्होंने अपने जीवन को दे दिया देवताओं के लिए, सारे विश्व के हित के लिए। हम तो बहुत व्याख्या नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमको बोलने में कुछ कष्ट है। आप लोग विद्वान हैं, समझेंगे इसको, भागवत के इस श्लोक को समझिए और उपकार में लगिए। जय श्री प्रभुपाद।